Welcome to another episode of Mini Fellowship in Movement Disorders, where we take most challenging concepts in movement disorders and simplify them into easy-to-follow explanations. I'm your host, Danish Bahati, a movement disorder neurologist who loves to teach physicians online, especially in the developing countries.
अच्छा दूसरा पॉइंट आपका वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो आपका क्वेश्चन है कि टॉप अप इंजेक्शन जिनको हम कहते हैं कि आप एक इंजेक्शन लगाएं और उसके बाद जो है थोड़ा सा लो डोज पे लगाएं और एक हफ्ते बाद पेशेंट को बुला लें, अगर उसको जितना रिजल्ट आया या नहीं आया उसकी बेस पे आप थोड़ा सा उसको और लगा दें. एक्चुअली दिस इज नंबर वन नॉट अनयूजुअल एंड नंबर टू इट इज प्रैक्टिस इन सम अदर प्लेसेस. हम मूवमेंट डिसऑर्डर में क्यों नहीं करते इसके पीछे भी लंबी कहानी है. अक्सर प्रैक्टिशनर्स इसी तरह प्रैक्टिस करते थे बोटॉक्स के साथ जब बोटॉक्स लॉन्च हुआ था. और हुआ ये कि जब 80s में और अर्ली 90s में जब ट्रायल हुए बोटॉक्स के तो उसमें हमने ये देखा कि बोटॉक्स की इम्यून रेजिस्टेंस आफ्टर गेटिंग 3 इंजेक्शंस वाज वेरी हाई. कुछ ट्रायल में 10% थी, कुछ में 20% भी थी, खासतौर पर जो बिल्कुल अर्ली बोटॉक्स उसमें बहुत हाई थी. तो उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 5 में से 1 पेशेंट या 10 में से 1 पेशेंट जो है जिसको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है वो एकदम इम्यून रेजिस्टेंस हो जाता है. और इसको हमने उस वक्त स्टडी करना शुरू किया और हमें इसकी सही समझ नहीं आ रही थी कि 9 में क्यों नहीं होता और 10वें में क्यों हो जाता है. और अभी भी हमें बहुत क्लियर नहीं पता इसका. हमने ये देखा उस जमाने में कि एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बन रही हैं. इवन बाकी 9 जो हैं जिनमें इम्यून टॉलरेंस नहीं हुई उनमें से भी तकरीबन आधे लोग जो हैं वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं, लेकिन उनकी एंटीबॉडीज जो बोटॉक्स के खिलाफ हैं वो ऐसी नहीं है कि वो बोटॉक्स के फंक्शन को खत्म कर दें. तो फिर जो है इस पे बड़ी बहस होनी शुरू हुई और जनरल कंसेंसस ये डेवलप हुआ, एक थ्योरी डेवलप हुई एक्सपर्ट्स के दरमियान, हाइपोथेसिस कह लें कि जी अगर हम फ्रीक्वेंट एक्सपोजर करेंगे बोटॉक्स का बार बार, या पहला एक्सपोजर करते हैं और हफ्ते बाद दूसरा एक्सपोजर करते हैं, तो वो मैकेनिज्म है जो कि इम्यून सिस्टम यूज करता है रिपीट एक्सपोजर का टू फॉर्म अ मेमोरी एंड फॉर्म अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी फॉरेन प्रोटीन. और ये नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह में यूज किया जाता है. तो अगर हम डिलेड रीएक्टिवेशन करेंगे, जी हमने पहली एक्टिवेशन की और वो सेल्स जिन्होंने मेमोरी फॉर्म करनी थी जब उनको अगले 6-8 हफ्तों के लिए दोबारा एंटीबॉडी नहीं मिलती, वो एंटीजन नहीं मिलता, तो वो उसका वो डाई ऑफ कर जाते हैं या वो स्मॉल रहते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स माउंट नहीं होता. ये दिस केम आउट ऑफ इम्यून लिटरेचर दैट वी न्यू वेरी वेल. और उसकी बेस हाइपोथेसाइज किया गया कि अगर हम ये टॉप अप इंजेक्शन करते हैं या एवरी 3 वीक्स या 4 वीक इंजेक्शन लगाते हैं दैट विल बी टू सून एंड इट विल क्रिएट एन इम्यून टॉलरेंस. एंड दैट्स व्हाई इट वाज एक्टिवली डिस्करेज्ड बाय द मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सपर्ट्स. वो एक्सपर्ट जो लेट 90s में डिस्टोनिया ट्रायल कर रहे थे और ब्लेफरोस्पैज्म ट्रायल कर रहे थे, उन्होंने ये प्रैक्टिस आपस में फैसला कर लिया कि हमें ये नहीं करना चाहिए. और उसके बाद रेजिस्टेंस गिर गई, रेजिस्टेंस 1% से भी कम पे आ गई. एक और उस जमाने में जो चीज हुई वो ये हुआ कि 97 में एलर्गन ने कहा कि जी जो हम बोटॉक्स की प्रिपरेशन बना रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा एडिशनल प्रोटीन्स हैं जो कि अननेसेसरी हैं. तो उन्होंने एक नई क्लीन्ड प्रोडक्ट बना के उसका प्रोसेस तैयार करके वो प्रोडक्ट बना के FDA को दोबारा फाइल किया कि हमें ये वाला प्रोडक्ट हम बोटॉक्स कहेंगे, वो पिछला वाला को हम छोड़ना चाहते हैं. एक्चुअली पहले ऑकुलाइनम कहते थे बोटॉक्स को. तो एक्चुअली उन्होंने वो 91 से उस पर काम करना शुरू कर दिया था और 93-94 में वो बना चुके थे, लेकिन FDA ने बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई. FDA वालों को वो कह रहे थे जी ये वही प्रोडक्ट है, आप इसकी दोबारा से स्टडी ना करवाए, इसको ऐसे ही अप्रूव कर दें जैसे ऑकुलाइनम पहले अप्रूव था. लेकिन FDA वाले बजट थे कि नहीं, इसमें काफी सारी चेंजेस हैं, ये नया प्रोडक्ट बन जाता है, इसमें इतनी सारी प्रोटीन निकाली है और बहुत सारी प्रोटीन काम की है, इस वजह से इसको दोबारा से इसका ट्रायल होगा और पिछली वाली इंडिकेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होंगी. इस पे बहस करते करते आखिरकार FDA कन्विंस कर लिया उन्होंने छोटे मोटे ट्रायल दिखा के कि जी फर्क नहीं है, वही चीज है. तो 97 में FDA ने कहा ठीक है आप ये बोटॉक्स आप नया वाला यूज कर लें. और उसमें बहुत सी एडिशनल जो प्रोटीन्स थी, एडजंक्ट प्रोटीन्स थी जो अननेसेसरी थी, उनको रिमूव कर दिया गया. और उसी दौरान में हमने भी ये मेथड अपना चेंज कर लिया स्टडी करने का कि हम 4 वीक से पहले या 6 वीक से पहले दोबारा इंजेक्शन नहीं लगाते थे. और इन दोनों के होने के बाद एकदम जो है वो 10-15% से रेजिस्टेंस का रिस्क नीचे आके less than 1%, और अब करंट एस्टिमेशन 0.01% पे है विद द करंट प्रैक्टिस. लेकिन वो बात एक जेन में अक्सर एक्सपर्ट्स के बैठ गई कि ये काम ठीक नहीं है. मैंने भी इसको कभी क्वेश्चन नहीं किया, मुझे इसी तरह ही सिखाया गया था और अक्सर एक्सपर्ट्स को क्वेश्चन नहीं करते. हाउएवर कि जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है अपर लिम स्पास्टिसिटी का फॉर बोटॉक्स, न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट है डेविड साइमन। उससे मेरी जब मुलाकात हुई, उसका एक स्पीकिंग प्रोग्राम था जहाँ मैं उससे मिला, मैंने बैठ के काफी उससे गपशप की। उसने मुझे बताया कि ही स्टिल प्रैक्टिसेस इट दैट वे, कि वो इंजेक्शन लगाता है और एक हफ्ते बाद पेशेंट को बुलाता है, और पेशेंट के अगर कोई लेफ्ट ओवर स्पेस्टिसिटी रह गई हो तो उस पर वो थोड़ा सा और डोज दे देता है। तो उसके बाद से मैंने री क्वेश्चन करना शुरू किया कि अगर वो इतना बड़ा एक्सपर्ट, वर्ल्ड लीडर स्पेस्टिसिटी में अगर ऐसा कर रहा है और अब भी कर रहा है, पता नहीं वो कितने पेशेंट्स में करता है। मेरा इंप्रेशन ये था कि वो हर पेशेंट में नहीं करता, कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में करता है जिनमें ज्यादा कंप्लेन हो, या शायद न्यू पेशेंट में करता है, लेकिन आई डिडंट गेट अ क्लियर नंबर फ्रॉम हिम। बट आई स्टार्टेड टू बिलीव दैट इट्स प्रोबेबली पॉसिबल, बट आई थिंक आई स्टिल विल हैव अ कॉशियस अगेंस्ट डूइंग इट टू फ्रीक्वेंटली, एंड आई वुड स्टिल वांट टू डू इट यू नो इन सिलेक्ट केसेस, इन फ्यू केसेस, मे बी 10% 20%, आई एम नॉट श्योर, आई हैव स्टिल नॉट डन इट। मैंने अभी तक ये काम ऐसा नहीं किया, बट इट्स प्रोबेबली डूएबल। अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर के कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी में और हमारी प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा फर्क डोजिंग का फर्क है, कि हमारी डोज शुरू ही 100 यूनिट से होती है, जबकि कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी में 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट लगाना आम बात है। उनके अक्सर पेशेंट रिंकल्स के इतने डोज लेते हैं, तो हो सकता है कि एक्सपोजर टॉक्सिन एंटीजन लोड हमारा ज्यादा हो उनके मुकाबले में, एंड दे आर मच सेफर इन डूइंग दिस एज कम्पेयर टू अवर इंडिकेशन, बट दिस इज ऑल बींग डिबेटेड, आई डोंट हैव अ फाइनल कंक्लूसिव आंसर ऑन इट। होपफुली दिस वॉज यूजफुल इनफ, इट वॉज वेरी डिटेल्ड, बट इसे ज्यादा समराइज करना, इसको समझाना मुश्किल था। But I'll try to post it in other places too so that other people can learn from this discussion too. Thanks for your question.
To learn more about the Mini Fellowship, visit our website for University of Nebraska Medical Center, Department of Neurological Sciences, where you can be part of the community and ask us questions. You can write to me on mdclinicforyou@gmail.com. It's mdclinic4u@gmail.com. And follow me on YouTube for longer discussions by searching for Danish Bahati, D-A-N-I-S-H space B-H-A-T-T-I. You can also find me on Twitter @DanishBahati_MD and on LinkedIn.